Gyanati mirandhasya gyananjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha. Bhakti kaise karna hai? Wo sab vistar jo hai, uske baare mein bolte hai. To chosat bhakti anga mein agli asat sangatiya. Sat or asat. Sat ka matlab jo sacha hai, jo shashvat hai, jo shuddh hai. Aur uska viparit shabda asat. To sat sanga karna chahi. Sat sanga ka matlab jo sat hai, aur jiska sanga ke dwara hum bhi sat ho jayenge. Abhi hum asat avastha mein dal gaye hai. Hum kaam krodh lobh ityadi se bhavit hote hain. To satsanga ka matlab jo shuddh hai, uska vishesh arth jo Shri Krishna Bhagwan ke bhakton hai, wo satsanga hai. Satsanga mein kirtan hote hai, Shri Krishna kirtan, Bhagavat katha shravan karna hai, aur baatchit jo hai Shri Krishna ke bare mein hoga, wohi satsang kahalata hai. Aur asat uska kya matlab? Iske bare mein Chaitanya Mahaprabhu ne kaha, asat sang tyag e vaishnavacha, stri sangi eka sadhu Krishna bhakta. Ek grihastha vaishnav ek ba Chaitanya Mahaprabhu se puche ki Prabhu, Vaishnavon ke liye kya karna chahiye? Vaishnava acharan kya hai? Chaitanya Mahaprabhu uttar bale ki asat sangatiyag e Vaishnava acharan. Vaishnavon ke liye ek acharan ka ek mukhya anga ye hai ki asat sangatiyag. Aur asat kya hai? Stri sangi eka sadhu Krishna bhakta. Stri sangi. Chaitanya Mahaprabhu Vaishnav parivarik jivan ke virudh nahi the. Lekin jo stri matlab indriya tripti ko jyada jor dete wo stri sangi kahalate. Jiska jivan ka udeshya hai, kali ye pum stri, maitun, bhog karna, wo stri sangi kahalate. Aur us prakar vyakti ka sanga bilkul tyag karna chahiye. Kyunki aisa log ka chaitan itna neech hai, ki aisa sanga karna se, wo sanga ka prabhav se, hamare chaitan bhi ekdam kalushit aur kala ho jayega. To satsang karna chahiye, atsang nahi hai. Aur dusra prakar asatsang kya, dusra prakar asadhu, asat kya hai? Krishna abhakt, uska matlab Krishna abhakt. Jo Bhagavan Sri Krishna ki bhakti nahi karte hai, usme ek hai jo bolte hai ki aur sab dev devi ek hi hai, Krishna, Ganesh, Surya, Indra, sab ek hi hai. To wo ek prakar abhakt hai. और दूसरा है जो नास्तिक, जो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध होते, जो जब सुनते है कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण के चरणों पर भक्ति प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, कृष्ण अभक्त एक प्रकार है जो इस प्रकार सत कथा सुन के नाराज होते, खिलाफ करते, नहीं नहीं नहीं, श्री कृष्ण सर्वोपरि नहीं है, जो उस प्रकार बात बोलते है वो असुर कहलाते है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दो प्रकार व्यक्ति है, द्वो भूत सर्गे लोके स्मिन दैव असुर एव च, दो प्रकार व्यक्ति है, एक है सुर, उसका मतलब भगवान के भक्तों, सत, और असुर विपरीत, श्री कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, श्री कृष्ण को द्वेष करते हैं, वो असुर कहलाते हैं। पद्म पुराण में असुर और सुर, भक्त और अभक्त, सत और असत के बारे में यही विश्लेषण है। विष्णु भक्त स्मितो दैव असुर्यस्ते विपार्य, या विष्णु विष्णु भक्त भवेत दैव, देव या सुर या सात या साधु कौन, विष्णु भक्त, और असुरस तद विपार्य, या जो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध है वे असुर कहलाते हैं। तो सत्संग करना चाहिए, स्मरण नित्यम अनित्यत्वम कुरु पुण्य अहोरात्र भाज साधु समागमा। शास्त्र में एक महत्वपूर्ण श्लोक है कि सदैव स्मरण करना चाहिए कि सब कुछ जो है इस जगत में अनित्य अस्थाई, इसलिए दिन रात पुण्य करना चाहिए। पुण्य पुण्य का वास्तविक मतलब कृष्ण सेवा, तो कृष्ण सेवा करो और भज साधु समागमम, साधु लोगों के पास रहना चाहिए। और जो आसत त्याज दुर्जन संसर्ग, जो दुर्जन असत जन वैसे संग त्याग करना चाहिए। एक शास्त्र है खत्यायन संहिता, जिसमें लेख है कि पंजर में रहना या सांप को अलिंगन करना आसत संगी आसत व्यक्तियों के साथ संग करने से अच्छा होता है। मतलब पूरा दुनिया में असत संग करने से और खराब अवस्था नहीं है, वो सबसे खराब है, क्योंकि जो असत है श्री कृष्ण भक्ति के बारे में हंसते है, वो क्या है, तो हमको कृष्ण भक्ति में प्रेरणा नहीं देते। असत संग से क्या होते है, जो असत है तो भोग विलास कर चाहते है, और हमको भी बोलते है तुम भी हमारे साथ बिया पियो, सिनेमा जाओ, पार्टी जाओ, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट देखो, और इस प्रकार असत संग का प्रभाव से हमारे मन कलुषित हो जाते है। मन कलुषित है, सत्संग के द्वारा मन शुद्ध हो जाते है। हम प्रयास करते हैं, हम नवीन कृष्ण भक्त है, प्राथमिक अवस्था में है, हम प्रयास करते हैं कलुषित नहीं होना। कृष्ण भक्ति करने से हम चाहते हैं कि हमारे हृदय साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, कृष्ण भक्ति प्रेममय हो जाएगा, लेकिन संकर्ष होते है क्योंकि माया का प्रभाव इतना ज्यादा है। इसलिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग से हम शक्ति मिलेगा, हम उत्साह मिलेगा, लेकिन असत्संग से हम निरुत्साह हो जाएगा। असत्संग से हमारे दृढ़ व्रत वो निश्चित भाव जो है वो कलाश हो जाएगा। इसलिए सत्संग करना चाहिए, असत्संग त्याग करना चाहिए। वो कृष्ण भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण ना देखते हैं, बहुत देव देवी गण की उपासक है तो वे भी पुण्यशाली है शायद, लेकिन वैष्णवाचार्य इतना खड़ा है कि यही बोलते हैं कि देव देवी अंग के उपासक वही संग भी त्याग करो, सिर्फ शुद्ध कृष्ण भक्तों के संग करो, क्योंकि हमारे लक्ष्य है केवल कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं रहेगी। तो इसलिए उस प्रकार भक्तों के साथ संग करना चाहिए। तो असत्संग त्याग और सत्संग करना, कृष्ण भक्त संग करना, वो भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण। और अगली भक्त्यंग, जद शिष्य नहीं बनना। तो अभी हम भक्ति का प्रार्थना स्तर, प्राथमिक स्तर में है, लेकिन जो आज का शिष्य है तो वैसे होते है कल का गुरु होगा, लेकिन यही परमार्श है, बहु शिष्य नहीं नहीं न करीबो, ज्यादा शिष्य ग्रहण करना नहीं चाहिए। यही कारण है कि एक शिष्य को अच्छी तरह शिक्षा देना मुश्किल है, क्योंकि अभी शिष्य का मतलब जो जैसे शिशु तो कुछ नहीं जानते है और उसका मन कलुषित होते, तो शिष्य को ऐसे ही शिक्षा देना चाहिए कि वो सब काम क्रोध लोभ मोह मद आदि इत्यादि त्याग करेगा और उसका मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वो कृष्ण भक्ति में तन्मय हो जाएगा। तो ऐसा शिक्षा देना इतना आसान नहीं है, तो गुरु तो शिष्यों का बहुत यत्न करना चाहिए, जैसे कि वे कृष्ण भक्ति पंथा में धीरे धीरे अग्रसर हो सकते हैं। और एक कारण है इसलिए ज्यादा शिष्य नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दीक्षा का समय गुरु शिष्यों का पाप कर्म ग्रहण करते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणम रजा अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ त्याग करो, दूसरा धर्म त्याग करो, सिर्फ मेरे चरण पर शरण लो, और अगर तुम वैसे करते हो मैं व्यवस्था करता हूं जैसे कि तुम्हारा सब पाप कलश हो जाएगा, मा शुचा चिंता मत करो। तो श्री कृष्ण कैसे वो सब पाप लेते हैं और कलश बंद हो जाते हैं, गुरु के द्वारा। गुरु शिष्य को मदद करते हैं यथार्थ उपदेश देने के द्वारा और शिष्य का पाप कर्म ग्रहण करते हैं। तो जो बलवान गुरु नहीं है, शक्तिशाली गुरु नहीं है, तो अगर ज्यादा शिष्य ग्रहण करते हैं तो गुरु के लिए ज्यादा मुश्किल होगा, उसलिए भी ऐसा कहना है। और एक कारण हो सकते है कि अगर ज्यादा शिष्य ग्रहण करना है तो गुरु का मन में थोड़ा सा प्रतिष्ठा की भावना आ सकती है, तो गुरु के लिए होशियार होते खर्चारा होते। तो इसलिए ये उपदेश है, परमार्श है, ज्यादा शिष्य ग्रहण न करना, विशेषकर जो सीरियस नहीं है वैसे शिष्य ग्रहण करना नहीं चाहिए। जो खाली हाँ 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 मैं गुरु ले जाता हूँ, हे गुरु जी गुरु जी, लेकिन कृष्ण भक्ति में इतना गंभीर नहीं होते, तो वैसे शिष्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। खाली इज्जत बढ़ाने के लिए शिष्य ग्रहण करना बिल्कुल नहीं चाहिए। गुरु शिष्य को देखना चाहिए, वो तैयार है सब भक्ति नियम पालन करना, अगर तैयार हो तो उसको दीक्षा दे सकते। और वास्तव में अगर कोई तैयार है वो सब भक्ति नियम पालन करना, अगर तैयार है जीवन कृष्ण भक्ति में आत्मसमर्पण करना, तो गुरु भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। तो जैसे भगवान दयालु है तो वैसे शिष्य को अग्रहण नहीं करेंगे। अगर कोई वैसे गंभीर है, सीरियस है कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो गुरु का तकलीफ होने के भी वो शिष्य को ग्रहण करेंगे और उसको मदद करेंगे, जैसे कि वो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। तो एक बात है, बहु शिष्य ना करें, जड़ शिष्य मत लो। लेकिन दूसरा उपदेश है, हमारा आज्ञा गुरु है अथर इदेश, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा प्रचार करो, गुरु हो, सब देश का लोग तारण करो। तो प्रचार के लिए शिष्य ग्रहण करना चाहिए। अगर जो गुरु है जो श्रेष्ठ भक्त है तो कनिष्ठ भक्तों को कृपा नहीं देते हैं, तो कैसे उसका उद्धार होगा? तो इसलिए रिस्क लेके भी जो श्रेष्ठ भक्त है जो प्रचार करने वाले हैं शिष्य ग्रहण करते हैं, जैसे कि वे शिष्यों धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में तन्मय हो सकते हैं। इस प्रकार भी एक प्रश्न होते हैं कि किस लिए इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं हमारे इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ के, कई प्रसिद्ध मंदिर है, नया बनाना मंदिर, जैसे कि हम अभी मुंबई में बैठ रहे हैं हरे कृष्ण लैंड पर, श्री श्री राधा रस बिहारी का सुंदर मंदिर में। तो ये मंदिर पूरा भारत में प्रसिद्ध है, इतने सुंदर मंदिर है, और वृंदावन में ये इस्कान का प्रसिद्ध कृष्ण बलराम मंदिर है, मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान में, चैतन्य चंद्रदाय मंदिर है, मायापुर चंद्रदाय मंदिर। तो इस प्रकार भारत में और भारत के बाहर भी इस्कान के बहुत सुंदर और विशाल मंदिर है। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ ऐसा परामर्श है कि इतना बड़ा मंदिर निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव सरल होना चाहिए। वैष्णव कौन है? जो संतुष्ट होते, अगर थोड़ा प्रसाद मिल सकते और प्रसाद नहीं मिल के भी अगर किसी भी जगह में बैठ सकते और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करने का अवसर मिलते हैं, संतुष्ट होते। वैष्णव सदैव संतुष्ट होते, आत्मा राम। मतलब वैष्णव के लिए टीवी देखना, पार्टी जानना, इधर उधर जानना, काम करना, ज्यादा पैसा लाने का कोई जरूरत नहीं है। वैष्णव खाली यही चाहते हैं भगवान का नाम जप करना और सत्संग, वैष्णव संतों के सत्संग करना, और अगर थोड़ा प्रसाद मिलते संपूर्ण संतुष्ट होते। तो इसलिए बड़ा बड़ा वैष्णवों खुद के लिए बड़ा मंदिर निर्माण करने का कोई जरूरत नहीं है, परंतु जैसे प्रचार बढ़ेगा, जैसे दूसरे लोगों को अवसर होगा श्री कृष्ण भक्ति में उत्साही होना, इसलिए मंदिर बनाना का जरूरी है। जैसे कि एक बार हमारे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे और उस समय वो कृष्ण बलराम इस्कॉन का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था। तो एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से पूछे कि आप रूप गोस्वामी का परंपरा में है और रूप गोस्वामी इस पवित्र व्रज मंडल में रहते थे, एक एक रात एक एक वृक्ष की छाया में। तो रूप गोस्वामी खुद के लिए बड़ा मंदिर नहीं बनना, तो आप किस लिए बनाते? तो श्रील प्रभुपाद हंसते थे और जवाब दिए थे कि मैं खुद के लिए मंदिर नहीं बनाता, लेकिन अगर मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ रहा था तो कोई मेरे बात सुनने के लिए नहीं आता था। मेरा जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप नहीं जानते साधु कौन है, इसलिए मैं विशाल मंदिर बनाता हूँ, जैसे कि आप मेरे बात को कुछ दाम देंगे और अगर आप मेरे बात सुनेंगे आपका आध्यात्मिक कल्याण होगा। तो वैष्णव तो अपना प्रतिष्ठा के लिए मंदिर नहीं बनाते, लेकिन जैसे दूसरे लोग आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद मिल सकते हैं, हरि कीर्तन सुनेंगे, हरि कथा सुनेंगे और इस प्रकार हरि भक्ति के लिए उत्साह मिलेंगे, इसलिए वैष्णवों बड़ा मंदिर बनाते हैं। और अगर कोई धनी हो तो सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है, ये सब पैसा मेरे पास आया, तो मंदिर बनाने के लिए दूसरे लोगों का आध्यात्मिक कल्याण के लिए वो सब कम से कम एक वो सब पैसा का एक भाग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, विशेषकर मंदिर बनाने के लिए। यही भारतीय संस्कृति है। देखो भारत में इतना विशाल मंदिर है, नाथद्वारा में, तिरुपति में, श्रीरंगम में, तो सब सब बड़े अमीर पूर्व काल में मंदिर बन रहे थे और अभी तक 100, 500, 1000 साल के बाद लोग मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक कल्याण मिलते। तो आपने के लिए वैष्णव कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए, भगवान का नाम प्रचार करने के लिए सब काम करते हैं, यही समझना चाहिए। हरे कृष्ण।